देवेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं सयलो वसगणिवः संवरणेनेव जस्सपिट्टन्ति पाससतस्सनमियुं फासनुयो अम्परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित दौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है भगवंत पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अभी ये 13वीं पुस्तक है अपनी, आज शुरू हो रही ना, 5वां खंड शुरू कर दिया है और उसमें पाषाणुओगद्दारम यानी स्पर्श अनुयोग द्वार यहाँ आज चलेगा। आओ शुरू करते हैं। अभी यहाँ हम 13वीं पुस्तक है आज, पहला ही सूत्र है फासेत्ति, जिसकी आराधना करने से। ये पहले मंगलाचरण का अर्थ करते हैं, जिसकी आराधना करने से ही सब प्रकार के उपसर्गों के समुदाय नष्ट हो जाते हैं। सयल उवसग निवहा, ये मंगलाचरण है ना, सयल है ना सकल संपूर्ण, उवसग उपसर्ग निवहा यानी उसका निवारण होता है, नष्ट हो जाते हैं। उस पार्श्व जिनेन्द्र को पाससतस्स नमियुं, पार्श्व जिनेन्द्र को नमस्कार करके फासनुयोम परुवेमो, मैं स्पर्श अनुयोग द्वार का निरूपण करता हूँ। ये पास और फास ये थोड़ा अनुप्रास होता है ना, इसलिए उनको याद किया, ख्याल है ना, क्योंकि फास यानी स्पर्श और पास यानी ये पार्श्वनाथ भगवान। पासस्स तस्स नमियुं, उन पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करके पासनुयोम स्पर्श अनुयोग द्वार परुवेमो, उसकी मैं प्ररूपणा करता हूँ। पहला सूत्र है फासेत्ति। अब स्पर्श अनुयोग द्वार का प्रकरण है, जो पहले स्पर्श अनुयोग द्वार का निर्देश कर आए हैं उसके अर्थ का कथन करते हैं। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा पहले कहे गए अधिकार की संभाल की गई है। स्पर्श अनुयोग द्वार पहले भी हमने देखा था, तो यहाँ फिर उसको याद करें। विशेषार्थ, पहले सत प्ररूपणा की उत्थानिका में जो कृति वेदना आदि 24 अनुयोग द्वारों का नाम निर्देश कर आए हैं, पहली पुस्तक में हमने देखे थे ये सारे, उनमें से प्रारंभ के 2 अनुयोग द्वारों का विवेचन हो चुका है। कृति और वेदना, स्पर्श यह तीसरा अनुयोग द्वार क्रम प्राप्त है। इसी बात का ज्ञान कराने के लिए फासेत्ति यह सूत्र आया है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। पहले कृति अनुयोग द्वार देखा था और वेदना खंड तो उसको भी देखा हमने इतनी देर। तथ इमानी 16 अनुयोग दाराणी नादववाणी भवंती, जैसे हमने पहले वेदना में भी वेदना खंड था ना, अभी उसमें भी ये हमने 16 अनुयोग द्वार देखे थे, अब यहाँ भी स्पर्श में भी 16 अनुयोग द्वार बताएंगे, उसके नाम बताते। तथ इमानी 16 अनुयोग दाराणी नादववाणी भवंती, फास निखेवे फास नय विभाषण दाये फास नाम विहाणे फास दव विहाणे फास खेत विहाणे फास काल विहाणे, फास भाव विहाणे, फास पच्चय विहाणे, फास सामित्य विहाणे, फास फास विहाणे, फास गई विहाणे, फास अनंतर विहाणे, फास संन्यास विहाणे, फास परिमाण विहाणे, फास भागाभाग विहाणे, फास अप्पा बहुएत्ति। जैसे वहाँ नाम थे वैसे अभी वहाँ वेदना के बदले यहाँ स्पर्श लिया, वहाँ वेदना वेदना था यहाँ स्पर्श स्पर्श लिया। अब इसके हिंदी में देखते हम, उसमें ये 16 अनुयोग द्वार ज्ञातव्य हैं, स्पर्श निक्षेप, स्पर्श नय विभाषणता, स्पर्श नाम विधान, स्पर्श द्रव्य विधान, स्पर्श क्षेत्र विधान, स्पर्श काल विधान, स्पर्श भाव विधान, स्पर्श प्रत्यय विधान, स्पर्श स्वामित्व विधान, स्पर्श स्पर्श विधान, स्पर्श गति विधान, स्पर्श अनंतर विधान, स्पर्श स्पर्शम हुआ है, स्पर्श सन्निकर्ष विधान, सन्निकर्ष ये स के ऊपर लिया ना, नहीं तो फिर डबल स न कर सकते, सन्निकर्ष। स्पर्श परिमाण विधान, स्पर्श भागाभाग विधान और स्पर्श अल्प बहुत्व। इस प्रकार स्पर्श अनियोग द्वार के ये 16 अर्थाधिकार होते हैं। अब ये 16 चैप्टर्स इसमें हो गए। शंका, यहाँ ये 16 अर्थाधिकार क्यों कहे गए हैं? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि इनके बिना स्पर्श अनियोग द्वार के ज्ञान कराने का अन्य कोई उपाय नहीं है। सभी ओर से परिपूर्ण उसका ज्ञान होने के लिए ये 16 अनियोग द्वार बताए हैं। इसलिए इन 16 अनियोग द्वारों के अनियोगों के द्वारा स्पर्श का कथन करना चाहिए, यह बात सिद्ध होती है। अब उद्देश्य के अनुसार निर्देश किया जाता है, निर्देश यानी कथन। तो कथन कैसे होगा? उद्देश्य हमारे कथन का क्या अभिप्राय है, क्यों हम कहना चाहते हैं, उसके अनुसार उसका निर्देश होता है। इस न्याय के अनुसार पहले स्पर्श निक्षेप अधिकार का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। हर बार कोई भी अनुयोग शुरू होता है तो ये इसी पद्धति से हम जाते आगे। हाँ, फास निक्षेवेत्ति, अब स्पर्श निक्षेप का अधिकार है। पहले जिस स्पर्श निक्षेप का निर्देश कराए हैं उसका यहाँ कथन करते हैं। शंका, स्पर्श निक्षेप अधिकार किस लिए आया है? ऊपर हमने 16 अनुयोग देखे, उसमें पहला ही पहला स्पर्श निक्षेप था, तो कहते उसको क्यों लिया यहाँ? समाधान, यह स्पर्श शब्द 13 अर्थों में विद्यमान है। उनमें से प्रकृत में किस अर्थ से प्रयोजन है और किस अर्थ से प्रयोजन नहीं है, अथवा वे 13 अर्थ कौन हैं, ऐसा प्रश्न करने पर शब्द स्पर्श शब्द के 13 अर्थों का कथन करके उनमें से अप्रकृत अर्थों का निराकरण करके, यानी उसमें हमें किसकी बात चल रही, कौन से स्पर्श की बात है, उसको फिर बताएंगे। वो अप्रकृत यानी जो यहाँ चर्चा में नहीं है, जो अभिप्रेत नहीं है, जो इष्ट नहीं है, उसको भी उसका निराकरण करके प्रकृत अर्थ का प्ररूपण करने के लिए यह स्पर्श निक्षेप अधिकार आया है। स्पर्श निक्षेप 13 प्रकार का है, ऊपर पढ़ना रह गया ना। 13 सभी है फास निक्षेवे, नाम फासे, ठवण फासे, दव्य फासे, एयखेत्त फासे, अनंतर खेत्त फासे, देश फासे, तय फासे, सव्व फासे, फास फासे, कम्म फासे, बंध फासे, भव्य फासे, चेदी। ये स्पर्श निक्षेप 13 प्रकार का है। नाम स्पर्श, स्थापना स्पर्श, द्रव्य स्पर्श, एक क्षेत्र स्पर्श, अनंतर क्षेत्र स्पर्श, देश स्पर्श, त्वक स्पर्श, सर्व स्पर्श, स्पर्श स्पर्श, कर्म स्पर्श, बंध स्पर्श, भव्य स्पर्श और भाव स्पर्श। हमेशा हम नाम स्थापना द्रव्य भाव इतने चार भेद करते हैं, तो क्षेत्र के उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र और काल स्पर्श नहीं लिया, काल की कोई बात ही नहीं इसमें। हाँ ये सब बातें आएगी ना इस सब का अर्थ समझाएंगे। त्वक त्वचा को कहते हैं, तो उसकी बात आएगी अभी। इस प्रकार शब्द स्पर्श शब्द 13 अर्थों में उपलब्ध होता है। स्पर्श शब्द इन 13 अर्थों में ही पाया जाता है ऐसा कोई निश्चय नहीं है, किंतु इस सूत्र द्वारा स्पर्श शब्द के अर्थों का मात्र दिशा ज्ञान कराया गया है। तो ये उसके नाम बताए। अब कहते फासनय विभाषण दाय, स्पर्शनय विभाषणता का अधिकार है। स्पर्श का नय द्वारा विशेष व्याख्यान करना स्पर्श नय विभाषणता कहलाता है। अलग अलग नयों से उस पर घटित करके दिखाएंगे, उसका यहां अधिकार है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, श के ऊपर बिंदी लगाना। 13 प्रकार के निक्षेपों का निर्देश तो किया, पर उनका अर्थ न कहकर पहले स्पर्शों का नए द्वारा विशेष व्याख्यान क्यों किया जा रहा है? अपने मन में भी संभ्रम है ना कि इनका अर्थ तो समझ में नहीं आया और आगे का अधिकार भी शुरू कर दिया। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि नए द्वारा विशेष व्याख्यान किए बिना निक्षेपार्थ का कथन करना संभव नहीं है। हम देखते हैं नए जिस एंगल से हम वस्तु को देखते हैं उसको नए कहते हैं, और उस वस्तु में जो कुछ धर्म है जो हम रखते हैं हम कहें ना निक्षेप, तो उसको निक्षेप कहते हैं, वो विषय में होते हैं। तो यहाँ पहले नए की अपेक्षा समझा कर बाद में निक्षेप समझाएंगे। निक्षेप शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। व्युत्पत्ति लभ्य ने ये शब्द तैयार कैसे हुआ, उसकी निष्पत्ति कैसी हुई, तो उसका अर्थ कैसा है वो उसको बताते हैं। निश्चय क्षिपति इति निक्षेप है, अर्थात जो किसी एक निश्चय पर पहुंचाता है उसे निक्षेप कहते हैं। परंतु निक्षेप नए विभाषणता अधिकार का कथन किए बिना संशय अनध्यवसाय और विपर्य ज्ञान में स्थित जीवों को वहां से हटाकर किसी एक निश्चय में स्थापित करने में समर्थ नहीं है। क्या कहते हैं, यदि नए समझाएंगे नहीं तो अकेले निक्षेप समझाने से संशय अनध्यवसाय और विपर्य दूर नहीं हो सकता, इसलिए पहले नयों की बात की। क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता इसलिए पहले नए विभाषणता का अधिकार का कथन करते हैं, कहा भी है। प्रमाण ने निक्षेपैर यो अर्थो नाभिसमीक्षते युक्तम चा युक्तवत भाति तस्या युक्तम च युक्तवत। उसका अर्थ देखते हैं, जिस पदार्थ का प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा प्रमाण नय निक्षेप ही, प्रमाण से नय से और निक्षेपों से तीनों को लिया ना, तो प्रमाण में कौन से किसको लिया, प्रत्यक्षादि प्रमाण। अन्य भी कोई प्रमाण होते हैं? हाँ भाई आपको मालूम है कोई अन्य प्रमाण? प्रत्यक्ष आदि का है ना। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ देखो प्रमाण कहते किसको है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तो ये प्रमाण तो दो प्रकार के हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण तो केवल ज्ञान है, वैसे पांचों ज्ञान प्रमाण है, हो पांचों ही ज्ञान प्रमाण है। अभी परोक्ष में कौन कौन है, तो परोक्ष में तो एक भेद उसका साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, यानी जैसे हम कहते हैं हमने आँख मैंने अपने आँखों से देखा, प्रत्यक्ष देखा, मैंने प्रत्यक्ष सुना, ऐसा भी कहते ना, जो लौकिक व्यवहार में जिसको प्रत्यक्ष कहने में आता है, क्योंकि उसने अपने स्वयं वहाँ हाजिर था और उसने वो जाना, तो उसको साम व्यवहारिक व्यवहार पूर्ता उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। वो परोक्ष का एक भेद है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। अब अन्य जो है स्मृति है, फिर प्रत्यभिज्ञान है। स्मृति यानी जो पहले जाना है वो धारणा में और वो स्मरण कर लिया, वो है स्मृति। वो भी प्रमाण ज्ञान है, पहले जाना था प्रमाण से और अभी उसको याद किया। प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान यानी सामने कोई चीज देखी हमने, अरे मेरे पास भी ऐसा ही है। जोड़ रूप ज्ञान, वर्तमान किसी पदार्थ को जानते हैं और पूर्व में जाने हुए के साथ उसको हम मिलान करते हैं, या तो विसदृश भी हो सकते हैं या विसदृश भी हो सकते हैं। अभी हमने सफ़ेद गाय देखी तो बचपन में हमारे घर में वो ऐसी काली गाय थी, ऐसा अगर हम कहेंगे तो विसदृश हुआ ना, परंतु उसको देखकर हमको डिफरेंस भी ज्ञान में आया, तो वो प्रत्यभिज्ञान है। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये सारे जो परोक्ष है वो भी प्रमाण है। आगम प्रमाण है ना, क्योंकि भगवान ने जो प्रत्यक्ष जाना है और वो बताया है वही बात आगम में लिखी है, तो वो भी प्रमाण ज्ञान कहलाती। तो आगम ज्ञान भी प्रमाण ज्ञान है। तो कहते जिस पदार्थ का प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा, नयगम आदि नयों के द्वारा, ये नयगम आदि नय कितने हैं याद है? सात है। हाँ, कौन कौन से? हाँ, नयगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, रुजु सूत्र नय, समभिरूढ़, शब्द और एवं भूत, ये सात नय है। तो नयगम आदि नयों के द्वारा और नामादि निक्षेपों के द्वारा, अभी हमने निक्षेप तो वैसे बहुत सारे लग सकते हैं, कम से कम तो चार लगेंगे, नाम स्थापना द्रव्य भाव, छह लगाएंगे तो नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और अभी तो हमने बहुत सारे देखे थे ना, कितने 13 देखे थे ना, तो अलग अलग अपेक्षा से अलग बहुत सारे नए भी हो सकते हैं, निक्षेप भी हो सकते हैं। तो कहते हैं प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा, नयगम आदि नयों के द्वारा और नामादि निक्षेपों के द्वारा, प्रमाण नय निक्षेप ही यो अर्थो न अभिसमीक्षते, सूक्ष्म दृष्टि से विचार नहीं किया जाता है वह पदार्थ युक्त यानी संगत होते हुए भी, यानी यदि हम प्रमाण के द्वारा, नयों के द्वारा और निक्षेपों के द्वारा वस्तु को विचार वस्तु यानी सूक्ष्म दृष्टि से उसका विचार नहीं करेंगे तो वस्तु तो ठीक है, युक्त है, फिर भी हमें कैसी लगती है? अठीक जैसे लगती है, अयुक्त जैसे लगती है, अयोग्य जैसे लगती है। तो वह पदार्थ युक्त यानी संगत होते हुए भी अयुक्त सा यानी असंगत सा प्रतीत होता है, और अयुक्त होते हुए भी युक्त सा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि हम उस पर विचार नहीं करते हैं, यानी अभी ज्ञान से जानो कहते हैं, तो ज्ञान से जानने ने क्या है शास्त्र में ऐसा ही होता ना, युक्ति के अवलंबन से, या विचार करो, कर विचार तो पाम, तो हम विचार करने लगते कैसे? कुतर्कों के द्वारा, वो नहीं चलेगा। तो ये प्रमाण के द्वारा, नयों के द्वारा और निक्षेपों के द्वारा सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर वस्तु जैसी है वैसी भाषित होती है, इसके द्वारा अगर विचार नहीं करेंगे तो वस्तु तो युक्त है, संगत है, पर हमें वो उल्टी पुल्टी लगती है। तो मिथ्यात्व कहो या मिथ्या ज्ञान कहो या अज्ञान कहो, उसको निवारने का हमारे पास कौन सा साधन है? ये प्रमाण नय निक्षेप। तत्वा सूत्र में पहले पहले इसकी बात की, प्रमाण नय अधिगम। अब 6 नंबर का सूत्र, कौन ओ के फासे इच्छदि, कौन नय किन स्पर्शों को स्वीकार करता है? ये तो प्रश्नात्मक सूत्र है, वो प्रश्न पर भी प्रश्न पूछ रहे शंकाकार, क्योंकि आगे के सूत्रों में कौन से नयों में कौन से स्पर्शों की बात, उसका विषय है, वो तो बताने वाले हैं। उसके पहले ही अभी प्रश्नकार पूछ रहा है, शंकाकार, यहां और किन स्पर्शों को नहीं स्वीकार करता, ऐसी पृच्छा क्यों नहीं की? क्या कहा, कौन से नयों का कौन सा ये जो है स्पर्श वो स्वीकार है, उसका विषय क्या है, ऐसा पूछा है, तो कौन सा नहीं है ऐसा क्यों नहीं पूछा? समाधान, नहीं, क्योंकि इन स्पर्शों को स्वीकार करता है ऐसा ज्ञान हो जाने पर शेष को नहीं स्वीकार करता, यह उपदेश के बिना ही जाना जाता है। ये हमारे पासिंग नंबर्स डिक्लेयर करते हैं, तो जिसका नंबर नहीं वो फेल है, वो तो ऑटोमेटिक है ना। वैसे कहते हैं, अभी आगे इसका उत्तर अभी देंगे। अलग अलग नयों के विषय कौन सा स्पर्श है, अभी अपना विषय कौन से चल रहा है, स्पर्श का, कौन से नए कौन से स्पर्श को, क्योंकि पहले नाम तो हमने बहुत सारे देखे, तो कौन से नयों को कौन से स्पर्श स्वीकार है उसको बताएंगे। सव्वे एदे फासा बोधवा होंती नेगमनयस नेच्छदय बंध भवियम व्यवहारो संगहणवोय। नैगम नय के ये सब स्पर्श विषय होते हैं ऐसा जानना चाहिए, किंतु व्यवहार नय और संग्रह नय बंध स्पर्श और भव्य स्पर्श को स्वीकार नहीं करते। नैगम नय का विषय तो ये सभी जो है, और व्यवहार नय संग्रह नय बंध स्पर्श को और भव्य स्पर्श को स्वीकार नहीं करते। इस एक गाथा ही बता दी उन्होंने, मुझे लगा ही ऐसा, ये सातवा जो सूत्र है ना वो गाथा के रूप में ही है। सव्वे दे फासा बोधवा होंति नेगमनयस नेच्छदीय बंध भवियम व्यवहारो संगहण होय। इस गाथा सूत्र का अर्थ कहते हैं, यथा असंग्रहिक नैगम नय के ये 13 ही स्पर्श विषय होते हैं ऐसा यहाँ जानना चाहिए। कौन से 13, जो हमने निक्षेप में बताया, ये 13 प्रकार का निक्षेप है, कहा ना निक्षेप तो विषय है और उसके जानने वाले नए हैं, तो कौन से नए किस निक्षेप को जानते हैं, तो किस स्पर्श को जानते हैं, ऐसा पूछा, ऐसा यहाँ जानना चाहिए, क्योंकि यह नए सब नयों के विषयों को स्वीकार करता है। नैगम नय बाकी नयों के विषयों को भी स्वीकार करता है। व्यवहार नय और संग्रह नय बंध स्पर्श और भव्य स्पर्श को नहीं स्वीकार करते। शंका, बंध स्पर्श इन दोनों नयों का विषय क्यों नहीं है? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन दोनों नयों की दृष्टि में उसका कर्म स्पर्श में अंतर्भाव हो जाता है। यथा कर्म स्पर्श 2 प्रकार का है, कर्म स्पर्श और नो कर्म स्पर्श। देखो ये जो अभी तो हमने निक्षेप की बात नहीं है ली है, परंतु आपने शायद प्रस्तावना पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी। देखो पहला विषय परिचय का पहला पान निकालना, क्योंकि हम पढ़ते जाएंगे और उसके कुछ अभी यहाँ केवल पढ़ेंगे, क्योंकि इसका सारा ही एक्सप्लेनेशन अभी आने वाला है। देखो विषय परिचय पहला ही पाए, स्पर्श अनुयोग द्वार से वर्गणाखंड प्रारंभ होता है। अब यहाँ से अपना वेदनाखंड तो पूरा हुआ, अभी वर्गणाखंड यहाँ शुरू होता है। इसमें स्पर्श कर्म और प्रकृति इन 3 अधिकारों के साथ बंधन अनुयोग द्वार के बंध और बंधनीय इन 2 अधिकारों का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। पहले हमने धवला भाग 1 में वो टेबल देखे थे, कौन सा कहाँ से वो आया है, उसमें वो बंधन और बंधनीय। फिर भी इसमें बंधनीय का अवलंबन लेकर वर्गणाओं का सविस्तर वर्णन किया गया है, इसलिए इसे वर्गणाखंड इस नाम से संबोधित किया है। बंधनीय किसको कहेंगे, जो बंधा बंधने योग्य है, बंधनीय बंधा जाता है, तो इसलिए यहाँ वर्गणा नाम दिया उसको और उसी के मुख्यता से वर्णन है। अब पहला स्पर्श अनुयोग द्वार है, स्पर्श छूने को कहते हैं, वह नाम स्पर्श और स्थापना स्पर्श आदि के भेद से अनेक प्रकार का है, जो अभी हमने 13 उसके प्रकार देखे थे। इसलिए प्रकृत में कौन सा स्पर्श गृहित है यह बतलाने के लिए यहाँ स्पर्श अनुयोग द्वार का आलंबन लेकर अभी जो 16 अधिकार बताए हैं कि स्पर्श निक्षेप, स्पर्श नय विभाषणता, स्पर्श नाम विधान, स्पर्श द्रव्य विधान कौमा देना आदि 16 अधिकारों के द्वारा स्पर्श का विचार किया है। अब उसमें स्पर्श निक्षेप जो अभी हमने देखा था उसकी बात करेंगे। देखो पहला है स्पर्शन निक्षेप, स्पर्शन लिखा है, बाकी सब जगह स्पर्श लिखा है, ठीक। स्पर्श निक्षेप के नाम स्पर्श, स्थापना स्पर्श, द्रव्य स्पर्श, एक क्षेत्र स्पर्श, अनंतर क्षेत्र स्पर्श, देश स्पर्श, त्वक स्पर्श, सर्व स्पर्श, स्पर्श स्पर्श, ये देश और सर्व के बाद एक एक कॉमा लगाना, कर्म स्पर्श, बंध स्पर्श, भव्य स्पर्श और भाव स्पर्श, ये 13 भेद है जो हमने उसके नाम तो पढ़े थे। स्पर्श नय विभाषणता, अभी जो स्पर्श निक्षेप के 13 भेद बतलाए हैं उनमें से कौन से स्पर्श किस नय का विषय है यह बतलाने के लिए यह अधिकार आया है, जो पुस्तक की बात यहाँ शॉर्ट में लिखी है। नय के मुख्य भेद 5 है, नयगम करो उसका, नयगम हुआ ना, नयगम ने, व्यवहार ने, संग्रह ने, रुजु सूत्र ने और शब्द ने। ये शब्द ने के आगे के भेद है ना, इसलिए उसको शब्द ने समभिरूढ़ और एवं भूत वो सब शब्द नय के ही भेद है, इसलिए यहाँ 5 कहे। इनमें से नयगम ने नाम स्पर्श आदि सब स्पर्शों का स्वीकार करता है, व्यवहार ने और संग्रह ने बंध स्पर्श और भव्य स्पर्श को स्वीकार नहीं करते, शेष 11 को स्वीकार करते हैं, स्वोकार दिख रहा है, स्वीकार करते हैं। ये दोनों ने बंध स्पर्श और भव्य स्पर्श को क्यों नहीं स्वीकार करते इसके कारण का निर्देश करते हुए वीर स्वयं स्वामी कहते हैं, इन नयों की दृष्टि में एक तो बंध स्पर्श कर्म स्पर्श में अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए इसे अलग से स्वीकार नहीं करते। दूसरी बात, बंध स्पर्श बनता ही नहीं है, क्योंकि बंध और करो उसको और स्पर्श इनमें कोई भेद भेद ही नहीं है, इसलिए भी इसे स्वीकार नहीं करते। तथा भव्य स्पर्श, भव्य ने भविष्य काल में होने वाला, होने योग्य भव्य स्पर्श वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं होता, इसलिए बंध स्पर्श के समान भव्य स्पर्श भी इसका विषय नहीं है, विपय हुआ। ये तो सब हम पढ़ने ही वाले हैं, हमें अभी इसका थोड़ा आगे का पेज निकालना। ये नाम स्थापना द्रव्य को भी हम गौण करेंगे, अभी जो हमारा जो विषय चल रहा है उसको पहले देखेंगे, बंध स्पर्श और भव्य स्पर्श पेज नंबर 3 पर। ये कल पढ़ लेना आप सब, क्योंकि यही फिर दोबारा बातें सब आने वाली है। देखो बंध स्पर्श देखते हैं, मिला विषय परिचय 3 में नीचे से दूसरा पैराग्राफ, बंध स्पर्श औदारिक शरीर का औदारिक शरीर के साथ तथा इसी प्रकार अन्य शरीरों का अपने अपने साथ जो स्पर्श होता है उसे बंध स्पर्श कहते हैं। कर्म का कर्म और नोकर्म के साथ तथा नोकर्म का नोकर्म और कर्म के साथ स्पर्श होता है यह दिखलाने के लिए कर्म स्पर्श और बंध स्पर्श को द्रव्य स्पर्श से अलग कहा है। अब उसके कितने भंग है वो बाद में देखेंगे हम। अब भव्य स्पर्श नीचे देखते हैं, जो आगे स्पर्श करने योग्य होंगे परंतु वर्तमान में स्पर्श नहीं करते वह भव्य स्पर्श कहलाता है। मूल सूत्र में इसके उदाहरण इस प्रकार दिए हैं, विष कूट, यंत्र, पिंजरा, कंदक और जाल तथा इनको करने वाले और इन्हें इच्छित स्थान में रखने वाले। यद्यपि इनका वर्तमान में अन्य पदार्थ से स्पर्श नहीं हो रहा है, पर आगे होगा। ये यंत्र वगैरह ये समझ में आते हैं? देखो, जैसे जानवरों को पकड़ने के लिए, वाघ सिंह आदि के पकड़ने के लिए बड़े बड़े पिंजरे होते हैं, या चूहे को भी उसका अपना अलग से बनाते हैं, पंछी वगैरह उनके पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, मच्छियों के लिए, मछली के लिए भी वो जाल बिछाते हैं। कंदक यानी वो गड्ढा करते हैं ना हाथी वगैरह पकड़ने के लिए, तो आगे उसमें उस जानवर का स्पर्श होगा, इस तरह से उसको लिया है। अभी हम अपने विषय पर आते हैं, क्योंकि ये सभी का अर्थ तो पुस्तक में फिर आने ही वाला है। आप पढ़ लेना वैसे प्रस्तावना, तो आगे आगे थोड़ा आसान हो जाएगा। अब यहाँ हम शंका समाधान चल रहा था अपना। देखो पेज 4 नंबर के पृष्ठ पर शंका, नीचे की शंका। बंध स्पर्श इन दोनों नयों का विषय क्यों नहीं है, वो अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि वो कर्म उसमें आता है, इसलिए कर्म स्पर्श में यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन दोनों नयों की दृष्टि में उसका कर्म स्पर्श में अंतर्भाव हो जाता है। यथा कर्म स्पर्श दो प्रकार का है, कर्म स्पर्श और नो कर्म स्पर्श। बंध स्पर्श का उन दोनों में ही अंतर्भाव होता है, क्योंकि इन दोनों के सिवाय बंध नहीं पाया जाता, अथवा बंध स्पर्श है ही नहीं, क्योंकि बंध और स्पर्श इन दोनों शब्दों में अर्थ भेद नहीं पाया जाता। जिसको बंध कहते उसी को स्पर्श कहते, तो कोई अलग बात है ही नहीं, ऐसा भी बताते हैं। यदि कहा जाए कि बंध के बिना भी लोह और अग्नि का स्पर्श देखा जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, लोह और अग्नि का स्पर्श ने जब लोहे को तप्त करते हैं तो वहां अग्नि दिखाई देती है ना, तो उनका तो कोई बंध नहीं है, फिर भी स्पर्श है। इसलिए बंध से स्पर्श भिन्न है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि संयोग संबंध और समवाय संबंध के बिना स्पर्श स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। यानी जहां स्पर्श कहेंगे वहां या तो संयोग है उसका, या समवाय यानी वो इकट्ठे है, मिले जुले है, विशेषार्थ। इसी बात को फिर समझाते हैं। यहां यह प्रश्न है कि बंध स्पर्श संग्रह नय और व्यवहार नय का विषय क्यों नहीं है। इस प्रश्न का दो प्रकार से समाधान किया है। प्रथम तो यह बतलाया है कि बंध स्पर्श का कर्म स्पर्श में अंतर्भाव हो जाता है। कर्म स्पर्श के कर्म और नोकर्म ये दो भेद है। लोक में और आगम में बंध शब्द द्वारा इन्हीं का ग्रहण होता है। जब हम कहते हैं इसको बंध हुआ, तो कर्म का बंध हुआ या नोकर्म का बंध हुआ, इसलिए बंध स्पर्श का कर्म स्पर्श में अंतर्भाव किया गया है। पर बंध शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ स्पर्श शब्द से भी ध्वनित होता है, यह देखकर दूसरा उत्तर यह दिया गया है कि बंध स्पर्श स्वतंत्र वस्तु ही नहीं है, इसलिए उसे व्यवहार नय और संग्रह नय का विषय नहीं माना गया, उस नय को वो स्वीकार नहीं है। शंका, भव्य स्पर्श को उक्त दोनों नयों का विषय क्यों नहीं कहा गया। बंध स्पर्श की बात की, अब कहते भव्य स्पर्श की भी बताओ, उसका समाधान। एक तो विष, यंत्र, कूट और पिंजरा आदि का विवक्षित द्रव्यों के साथ वर्तमान में स्पर्श नहीं उपलब्ध होता, इसलिए भव्य स्पर्श को उक्त दोनों नयों का विषय नहीं कहा है। नयगम ने तो वो भूत भविष्य सबको लेता है ना, तो उसको तो स्वीकार था सब। यदि कहा जाए कि दो का स्पर्श हुए बिना भी स्पर्श संज्ञा बन जाएगी, सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। दूसरी, अस्पृष्ट काल में स्पर्श है नहीं, और स्पृष्ट काल में, अस्पृष्ट काल यानी जब वहां स्पर्श नहीं पाया जाता है उस काल में, और स्पृष्ट काल में नहीं, जब उसका स्पर्श हो गया, संबंध आ गया, उस काल में उसका कर्म स्पर्श, नो कर्म स्पर्श, सर्व स्पर्श और देश स्पर्श में अंतर्भाव हो जाता है। क्या कहते हैं, जब स्पर्श नहीं है तो है ही नहीं है, और जब है तो किसी ना किसी रूप में है वो, तो उसमें उसका अंतर्भाव हो गया। इसलिए भी भव्य स्पर्श को व्यवहार ने और संग्रहने का विषय नहीं माना, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। तथा भव्य स्पर्श स्थापना स्पर्श में अंतर्भूत हो जाता है, इसलिए संग्रह ने उसे स्वीकार नहीं करता। संग्रह स के ऊपर बिंदी लगा, क्योंकि वह यह है ऐसा अध्यारोप किए बिना वर्तमान काल में यंत्रादिक में स्पर्श व्यवहार नहीं बन सकता। यानी वहां पकड़ने के लिए, अभी चूहे को पकड़ने के लिए वहां पिंजरा लगाया है ना, तो वर्तमान में वो भविष्य में होगा ऐसा वहां, हम वहां टेक इट फॉर ग्रांटेड, अध्याहार अध्यारोप किया ना, विशेषार्थ। भव्य स्पर्श का स्वरूप आगे बतलाने वाले हैं, उससे स्पष्ट है कि भव्य स्पर्श में वर्तमान कालीन स्पर्श विवक्षित न होकर स्पर्श की योग्यता ली गई है। यानी भविष्य में होने वाले हैं, उसकी स्पर्श करने योग्य है वहां, इसलिए उसकी योग्यता ली है। और व्यवहार ने तथा संग्रह ने ऐसे स्पर्श को स्वतंत्र रूप से ग्रहण नहीं करते, इसलिए यहाँ भव्य स्पर्श व्यवहार ने और संग्रह ने का विषय नहीं है, यह कहा है। अब 8 नंबर की ये गाथा, फिर गाथा सूत्र है यहाँ पर। एयखेतमनंतर बंधम भवियम चने चुजुरसो नामं च फास फासं भाव फासं च सदनो। ऊपर नेच्छदुज्जु सुदो रुजुसूत्र, रुजुसूत्र एक क्षेत्र स्पर्श, अनंतर स्पर्श, बंध स्पर्श और भव्य स्पर्श को स्वीकार नहीं करता। रुजुसूत्र किसको स्वीकार करता है, जो वर्तमान में है उसको। किंतु शब्द ने नाम स्पर्श, स्पर्श स्पर्श और भाव स्पर्श को ही स्वीकार करता है। अब इस गाथा सूत्र का अर्थ कहते हैं, फिर से बोलो जोर से। स्थापना किस में, शब्द में? आपके उसमें लिखा है किस में कहां, मूल सूत्र में ऐड किया है आपने, लिखा है क्या, किसने लिखा है हाथ से? अच्छा, हम आगे पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा, तो देखेंगे। वो कौन शब्द ने में लिया है, किस में लिया है? अच्छा, अभी देखेंगे। अभी सूत्र का अर्थ कहते हैं, यथा क्षी धातु का अर्थ निवास करना है, इसलिए क्षेत्र शब्द का यह अर्थ है कि जिसमें पुद्गल आदि द्रव्य निवास करते हैं उसे क्षेत्र अर्थात आकाश कहते हैं। एक जो क्षेत्र, वह एक क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार इस व्युत्पत्ति का आलंबन लेकर यदि एक आकाश प्रदेश ग्रहण किया जाता है तो एक क्षेत्र स्पर्श नहीं बनता, क्योंकि अन्य द्रव्यों का अपने सिवाय अन्य द्रव्यों में निवास नहीं पाया जाता और सभी पदार्थ अपने स्वरूप में निविष्ट ही उपलब्ध होते हैं। ऐसा नियम है कि जो जिसकी स्वरूप उपलब्धि का कारण होता है वही उसका आधार माना जा सकता है। क्या कहना चाहते हैं? प्रत्येक द्रव्य अपने ही क्षेत्र में रहता है, या लिखा ना, जो जिसकी स्वरूप उपलब्धि का कारण है। तो आत्मा के स्वरूप उपलब्धि का कारण आत्मा स्वयं है, तो वही उसका आधार होगा, अन्य द्रव्य उसका आधार नहीं बन सकता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने में उसका निवास पाया जाता है, इसलिए वहां एक ही क्षेत्र में ऐसा नहीं बनता। अब कहते यदि कहा जाए इतर पदार्थ भी उसमें निवास करता है, तो इस पर हमारा कहना यह है कि आकाश द्रव्य से शेष द्रव्यों की स्वरूप उपलब्धि तो होती नहीं, क्योंकि निष्पन्न पदार्थों का ही आकाश में अवस्थान देखा जाता है, इसलिए आकाश को क्षेत्रपना नहीं प्राप्त होने से एक क्षेत्र स्पर्श नहीं बनता। ये सारे फिर विशेषार्थ में युक्तियां सारी बताएंगे, अब ये पहले हम पढ़ते हैं। ये विशेषार्थ में स्थापना स्पर्श लिखा है आगे जाके, राइट साइड में 7 नंबर है ना। देखो विशेषार्थ पढ़ के फिर इसको ये हम आएंगे वापस दोबारा। 7 नंबर पर नीचे विशेषार्थ लिखा है ना, क्योंकि ये सारी बातें वहां सरल करके बताएंगे, उसको पहले पढ़ के फिर इसको आएंगे। देखो विशेषार्थ, यहाँ युक्तिपूर्वक यह बतलाया गया है कि रुजुसूत्र ने एक क्षेत्र स्पर्श, अनंतर क्षेत्र स्पर्श, बंध स्पर्श, भव्य स्पर्श और स्थापना स्पर्श को क्यों नहीं स्वीकार करता। यहाँ का ये जो स्थापना है ना, वो वहां ले लिया होगा। क्योंकि विशेषार्थ के ऊपर के 2 लाइन में देखो मिला, इसी प्रकार स्थापना स्पर्श भी नहीं है, वो भी करके उन्होंने बता दिया। मूल गाथा में तो है नहीं, फिर भी वो च लिखा है ना वहां ऊपर, बवियम च, तो ये च में वो आ गई बात। अब विशेषार्थ आगे बढ़ाते हैं दोबारा। यहां युक्तिपूर्वक यह बतलाया गया है कि रुजुसूत्र ने एक स्पर्श, अनंतर क्षेत्र स्पर्श, बंध स्पर्श, भव्य स्पर्श और स्थापना स्पर्श को क्यों नहीं स्वीकार करता। सार यह है कि रुजुसूत्र का नय का विषय न तो द्वित्व है, द्वित्व ने दो पना, और न अतीत अनागत काल है। ये दोपना किस नय का विषय है? नयगम, न एकम, दो को स्वीकार करता है ना वो, किंतु इन एक क्षेत्र स्पर्श आदि की सिद्धि के लिए कहीं तो द्वित्व और कहीं अतीत अनागत काल को स्वीकार करना पड़ता है, तभी इनका सद्भाव बनता है, परंतु रुजु सूत्र ने उसको नहीं स्वीकार कर, अन्य नए तो बताएंगे उसको। यही कारण है यहां पर रुजु सूत्र नए के विषय रूप से इन 5ों को अस्वीकार किया है। यद्यपि गाथा सूत्र में स्थापना स्पर्श का रुजु सूत्र नए के अविषय रूप से निर्देश नहीं किया है, किंतु स्थापना निक्षेप रुजु सूत्र नए का विषय न होने से स्थापना स्पर्श को रुजुसूत्र ने नहीं स्वीकार करता, यह अपने आप फलित हो जाता है। ये आगे वाला वो विशेषार्थ बाद में पढ़ेंगे, अभी जिसका विशेषार्थ पढ़ा है वो मूल विषय पर आते हैं। फिर दोबारा 6 नंबर का पृष्ठ, पहले में पहले उन्होंने पहले पैराग्राफ में क्या लिखा है, क्षेत्र शब्द का अर्थ क्या है, जिसमें पुद्गल आदि जो द्रव्य निवास करते उसे क्षेत्र कहते हैं अर्थात आकाश करते हैं। स्थापना जो है, स्थापना निक्षेप, वो रुजु सूत्र का विषय नहीं हो सकता, ये बताना चाहते ओपन वर्तमान में वो कहाँ है, हमने स्थापना की है ना उसने, ये बात वहां है नहीं है, बंद नहीं है, हमने स्थापना की। अब ये स्पर्श की बात छोड़ो, सामान्य स्थापना निक्षेप भी पहले भाग में जो हमने कौन से नए का कौन सा नए विषय उसका निक्षेप विषय हो सकता है, तो स्थापना निक्षेप ये रुजु सूत्र नए का विषय नहीं होगा, इसलिए स्थापना स्पर्श भी उसको उसमें से बाद किया उन्होंने। देखो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, एक क्षेत्र स्पर्श जब कहेंगे तो हम जो एक क्षेत्रावगाह संबंध है उसको यहाँ नहीं समझना, ये बात यहाँ बता रहे पहले में, पहले वो बात, एक क्षेत्र का अर्थ क्या है, वो आकाश का क्षेत्र यहाँ नहीं बता रहे, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना क्षेत्र जुदा जुदा है, अलग अलग है। जब एक क्षेत्र आगे जाके समझाएंगे तो बात ख्याल में आएगी। यहाँ क्या कहते हैं, कोई द्रव्य अपना क्षेत्र छोड़कर बाहर जाता ही नहीं, उसका प्रत्येक द्रव्य का आधार वो अपना क्षेत्र ही है, के स्वरूप के बाहर वो जा ही नहीं सकता है, ये बात बताई। अब दूसरा पैराग्राफ, यदि कहा जाए इतर पदार्थ भी उसमें निवास करता है तो इस पर हमारा कहना यह है कि आकाश द्रव्य से शेष द्रव्यों की स्वरूप उपलब्धि तो होती नहीं, आकाश द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्यों का स्वरूप नहीं पाया जाता है, स्वरूप उपलब्धि होना है ने? वो आकाश के क्षेत्र में इसलिए वो अन्य द्रव्यों को, हम ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि निष्पन्न पदार्थों का ही आकाश में अवस्थान देखा जाता है, यानी वो ऑलरेडी है अपने से, आकाश में है इसलिए वो है ऐसा नहीं है, इसलिए आकाश को क्षेत्रपना नहीं प्राप्त होने से एक क्षेत्र स्पर्श नहीं बनता। अब आगे, जिसमें खियंती निवसंती अर्थात निवास करते हैं वह क्षेत्र है, वे व्युत्पत्ति के अनुसार वो कौन सा अर्थ होता है उसकी बात बता रहे। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यदि वस्तु का अपना स्वरूप ही ग्रहण किया जाए तो भी एक क्षेत्र स्पर्श नहीं बनता, यानी वस्तु को ही एक क्षेत्र कह दो तो भी नहीं बनता। क्या नहीं बनता वो यहाँ बता रहे, क्या बनता है वो बाद में बताएंगे, क्योंकि ऐसा मानने पर एक क्षेत्र का अर्थ होता है एक स्वरूप, और ऐसी अवस्था में उसमें द्वित्व नहीं बन सकता। क्या कहते हैं, जब वस्तु को ही उसका एक क्षेत्र कहेंगे तो ये स्पर्श कैसे बनेगा, एक क्षेत्र स्पर्श होना है ना, तो एक क्षेत्र हो गया तो उसका दोपना है ही नहीं वहां पर, तो उसमें स्पर्श घटित नहीं होगा। दो वस्तु में यदि हम कहेंगे ना, मान लेते ऐसे इसका और इसका स्पर्श हुआ तो हम कहेंगे ना उसका कोई एक कोना इसके साथ चिपका, परंतु ये एक स्पर्श ने किसी वस्तु का क्षेत्र नहीं समझना, ये बात यहां बता रहे। यदि कहा जाए एक में भी स्पर्श की उपलब्धि, श के ऊपर जरा स्पष्ट करना रफर, एक में भी स्पर्श की उपलब्धि हो जाएगी सो भी बात नहीं है, क्योंकि उसकी दो आदि द्रव्यों के रहने पर ही उपलब्धि होती है। स्पर्श कब हो सकता है, जो द्रव्य दो द्रव्य कांटेक्ट में आए तब, अभी कहा ना समवाय हो या उसका संबंध हो तब हम उसको स्पर्श कह सकते हैं। आगे, इसी प्रकार अनंतर क्षेत्र स्पर्श भी नहीं बनता, क्योंकि क्षेत्र नाम की कोई वस्तु ही नहीं ठहरती। जब एक क्षेत्र नहीं बनेगा तो अनंतर क्षेत्र भी नहीं बनेगा। यदि आकाश द्रव्य को क्षेत्रपना सिद्ध हो तो सांतर क्षेत्र और अनंतर क्षेत्र भी सिद्ध हो सकते हैं, परंतु पूर्वोक्त न्याय से आकाश के क्षेत्रपना सिद्ध नहीं होता। पहले ही पहले पैराग्राफ में ही बता दिया कि आकाश को यहाँ एक क्षेत्र नहीं कहा है, इसलिए अनंतर क्षेत्र की सिद्धि न होने से अनंतर क्षेत्र स्पर्श भी नहीं बनता, यानी एक क्षेत्र की भी सिद्धि नहीं हुई। यदि हम द्रव्य के क्षेत्र को एक क्षेत्र मानेंगे तो ये बनता ही नहीं है, इसलिए अनंतर क्षेत्र भी बन नहीं सकता, ऐसा यहाँ स्वीकार करना चाहिए। यदि स्वरूपार्थ में विद्यमान क्षेत्र शब्द लिया जाता है, कौन सा अर्थ लेंगे? स्वरूप, स्वरूप को ही अगर हम क्षेत्र कहेंगे तो भी अनंतर क्षेत्र अनंत हुआ है, अनंतर चाहिए। हाँ, जो नहीं घटित होता है तो उसका निष्पत्ति व्युत्पत्ति अर्थ के द्वारा उसका अर्थ बता रहे हैं। तो स्वरूप अर्थ में विद्यमान क्षेत्र शब्द लिया जाता है तो भी अनंतर क्षेत्र नहीं बनता, क्योंकि यह इसके अनंतर है। इस वचन प्रवृत्ति का कोई कारण नहीं पाया जाता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप में है, तभी वो पूरा पूरा आ गए ना द्रव्य, तो उसके पश्चात है अभी, ऐसे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, यदि कहा जाए अत्यंत पृथकभूत पदार्थों का अंतर नहीं पाया जाता, सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। अब बंध स्पर्श की बात करेंगे। बंध स्पर्श भी नहीं है, ये रुजु सूत्र के कौन से विषय नहीं है उसकी बात चल रही है। बंध स्पर्श भी नहीं है क्योंकि द्वित्व का त्याग कर एकत्व की प्राप्ति का नाम बंध है, परंतु एकत्व के रहते हुए स्पर्श नहीं पाया जाता, क्योंकि एकत्व में स्पर्श के मानने में विरोध आता है। क्या कहते हैं? स्पर्श जब कहेंगे तो दो बातें सिद्ध होती है, और जब बंध कहते तो जिसमें अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान, उसको बंध कहते। हमने सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ा था ना जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान, हम ये एक पेन है तो एक हुआ, तो अभी यहाँ द्वित्व कहाँ रहा, इसलिए उस नए को वो स्वीकार नहीं है। यदि कहा जाए इस तरह तो सर्वस्पर्श के साथ व्यभिचार हो जाएगा, सो भी बात नहीं है, क्योंकि वहां पर एकत्व की प्राप्ति के बिना सब अवयवों का स्पर्श स्वीकार किया गया है। ये जब भेद हम देखेंगे ना, सर्वस्पर्श यानी पूरे के पूरे का कांटेक्ट में आना, वो सर्वस्पर्श कहेंगे। इसी प्रकार भव्य स्पर्श भी नहीं है यानी उसका विषय नहीं है, रुजु सूत्र नय का विषय नहीं है, क्योंकि जब स्पर्श पर्याय ही उत्पन्न नहीं हुई तब उसका वर्तमान काल में सद्भाव मानने में विरोध आता है, और यदि स्पर्श पर्याय उत्पन्न भी हो गई है तो उसका शेष स्पर्शों में अंतर्भाव देखा जाता है। यदि वो स्पर्श पर्याय उत्पन्न हो गए तो अन्य किसी वो स्पर्शों में वो अंतर्भूत हो जाते हैं। दूसरे, वर्तमान काल के सिवाय शेष कालों का अस्तित्व भी नहीं पाया जाता, इसलिए भी भव्य स्पर्श नहीं बनता। क्या अन्य काल ही नहीं है? इस नए के विषय में नहीं है, ऐसा लेना। इसी प्रकार स्थापना स्पर्श भी नहीं है, क्योंकि वह यह है इस संकल्प के कारण अन्य स्वरूप नहीं हो सकता। द्वित्व हो गया ना, फिर स्थापना में दो बातें हैं, जैसे सामने मूर्ति है और ये महावीर भगवान है, किसी अन्य वस्तु को, अन्य पदार्थ को, अन्य द्रव्य को हमने अन्य द्रव्य में स्थापित किया, तो रुजु सूत्र नय को यह स्वीकार नहीं है। और वर्तमान काल के साथ स्थापना निक्षेप का विरोध भी है, विशेषार्थ, ये विशेषार्थ अभी हमने पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं, 8 पृष्ठ पर यह पैराग्राफ नया। परंतु शब्द नय तो नाम स्पर, अभी रुजु सूत्र नय की बात हो गई। सूत्र में क्या देखा था हमने? शब्द नय, नाम स्पर्श 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 और भाव स्पर्श को ही स्वीकार करता है। ऋजु सूत्र में तो किसको नहीं स्वीकार करता बताया था, अब शब्द में क्या क्या स्वीकार करता है तो देखो, शब्द ने तो नाम स्पर्श को स्वीकार करता है क्योंकि स्पर्श शब्द के बिना भाव स्पर्श के कथन करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। हमने नाम रखा ना स्पर्श, स्पर्श यह नाम रखा तो यह नाम स्पर्श है, तो उसके बिना हम कैसे बताएंगे, नाम लेकर ही वस्तु का कुछ कथन हो सकता है। वह स्पर्श स्पर्श को भी स्वीकार करता है क्योंकि द्रव्य के बिना कर्कश आदि गुणों का अन्य गुणों के साथ संबंध देखा जाता है। भाव स्पर्श को भी वह स्वीकार करता है क्योंकि ज्ञान से जिन कर्कश आदि गुणों को हम जानते हैं उनका वर्तमान काल में सद्भाव पाया जाता है। अब इसी का विशेषार्थ फिर बताते हैं। शब्द ने नाम निक्षेप स्पर्श ये क्या है स्पर्श स्पर्श, जब हम पढ़ेंगे ना देखो स्पर्श स्पर्श किसको कहना, आप कुछ कहना चाहते हैं? वो पर्याय स्पर्श गुण की पर्याय उसका स्पर्श। हाँ पेज नंबर 25 निकालना। विशेषार्थ में विषय परिचय में वही आगे बताते हैं। हाँ स्पर्श गुण के 8 भेद है, विषय परिचय में 3 में उनका स्पर्शन इंद्रिय के साथ जो स्पर्श होता है, विषय परिचय में 3 फिर हम जाएंगे 25 पेज पर। देखो स्पर्श गुण के 8 भेद है, इनका स्पर्शन इंद्रिय के साथ जो स्पर्श होता है उसे स्पर्श स्पर्श कहते हैं। स्पर्श इंद्रिय का स्पर्शन इंद्रिय का कठोर के साथ स्पर्श होगा या मृदु के साथ स्पर्श होगा उसको स्पर्श स्पर्श कहेंगे। यहाँ पर कर्कश आदि गुणों के परस्पर स्पर्श की विवक्षा नहीं है, ये गुण यानी पर्याय कहो ना, स्पर्श की पर्याय, उनका आपस में स्पर्श नहीं है। कर्कश का मृदु के साथ स्पर्श होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अन्य रूप आदि गुणों का भी स्पर्श लेना पड़ेगा। यदि स्पर्श का स्पर्श गुणों के यानी पर्यायों के साथ स्पर्श मानेंगे तो स्पर्श रस गंध वर्ण तो यह कठोर स्पर्श का वर्ण के साथ भी संबंध मानना पड़ेगा, यानी स्पर्श मानना पड़ेगा। किंतु सूत्र में स्पर्श स्पर्श से कर्कश आदि 8 प्रकार के स्पर्श का ही ग्रहण किया है। देखो यही बात यहाँ 25 पृष्ठ पर है। आगम में कर्कश आदि विशेषार्थ में नीचे आगम में कर्कश आदि 8 स्पर्श माने गए हैं, यानी यह पर्याय बात हुई ना, पर्यायों की स्पर्श गुण के पर्यायों की। मैं 25 प्रेज पढ़ रही हूँ विशेषार्थ में। इनका स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जो स्पर्श होता है उसे स्पर्श स्पर्श कहते हैं। यद्यपि स्पर्श स्पर्श शब्द का स्पर्शों का जो परस्पर में शब्द होता है उसे स्पर्श स्पर्श कहते यह एक अर्थ भी किया जा सकता है, पर इस अर्थ के करने पर सबसे बड़ी आपत्ति यह आती है कि स्पर्श गुणों का अन्य गुणों के साथ होने वाले स्पर्श को भी स्पर्श स्पर्श मानना पड़ेगा, या एक स्पर्श पर्याय की दूसरे स्पर्श के साथ पर्याय का स्पर्श होने को स्पर्श नहीं कहा है। वैसा अगर मानेंगे तो अन्य गुणों के साथ भी स्पर्श होता है ऐसा मानना पड़ेगा। यदि यह कहा जाए कि गुण निस्वभाव होते हैं इसलिए उनका परस्पर में स्पर्श नहीं बनता, परंतु गुण को कथनचित द्रव्य मान लेने पर इस आपत्ति का परिहार हो जाता है, ऐसा यदि कोई कहे तो इससे यद्यपि गुण का दूसरे गुण के साथ स्पर्श मानने पर जो आपत्ति प्राप्त होती है उसका परिहार हो जाता है, पर ऐसे स्पर्श को अंततः द्रव्य स्पर्श का एक भेद मानना पड़ेगा। तो स्पर्श शब्द को ध्यान में रखकर यहां अन्य गुणों के साथ कर्कश आदि के होने वाले स्पर्श को छोड़कर केवल कर्कश आदि 8 स्पर्शों के परस्पर में होने वाले स्पर्श को भी स्पर्श स्पर्श में गिन लिया है। यानी दो प्रकार से अर्थ करते हैं, कर्कश आदि पर्यायों का इंद्रिय के स्पर्शन इंद्रिय के साथ संबंध जो होता है स्पर्श होता है, और दूसरा ये जो 8 पर्याय है ना, तो उसके भी संयोग बना दो कितने हो गए। हाँ, 8 बार 200 गुणा करो, जिसका अर्धच्छेद 8 है ऐसी कौन सी संख्या है। हाँ, 256, उसमें से एक माइनस करो तो ये फिर उसके भंग बनाए। वो बात हम बाद में पढ़ेंगे, अभी अपने विषय पर आते हैं। देखो यहाँ पर आए थे ना, विशेषार्थ हम पढ़ते हैं। नहीं, ये कर्कश शब्द कहीं कहाँ आया था, ऊपर विशेषार्थ के ऊपर था। हाँ, पढ़ लिया था। ये शब्द नए स्पर्श स्पर्श को स्वीकार करता है, ऐसी बात है नहीं वहां पर। देखो फिर पढ़ते विशेषार्थ के ऊपर का पैराग्राफ, पेज नंबर 8। परंतु शब्द नहीं तो नाम स्पर्श को स्वीकार करता है, क्योंकि स्पर्श शब्द के बिना भाव स्पर्श के कथन करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। स्पर्श ऐसा नाम, उसके बिना तो हम कैसे कुछ कथन ही कर नहीं सकते, इसलिए उसका स्वीकार है। वह स्पर्श स्पर्श को भी स्वीकार करता है, क्योंकि द्रव्य के बिना कर्कश आदि गुणों का अन्य गुणों के साथ संबंध देखा जाता है। भाव स्पर्श को भी वह स्वीकार करता है, क्योंकि ज्ञान से जिन कर्कश आदि गुणों को हम जानते हैं उनका वर्तमान काल में सद्भाव पाया जाता है। अब इसी का विशेषार्थ, शब्द ने नाम निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप को विषय करता है, इसी से यहाँ उक्त 3 स्पर्श शब्द ने के विषय रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। ये जो स्पर्श शब्द स्पर्श वाला जो है वो द्रव्य निक्षेप में उन्होंने समाहित कर दिया। शब्द ने शेष स्पर्शों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अपने विषय में उन स्पर्शों का अभाव है। इस प्रकार स्पर्श नय विभाषणता का कथन समाप्त हुआ। अब नाम स्पर्श निक्षेप का कथन करने के लिए आगे का सूत्र आया है। पहले निक्षेप 13 प्रकार के बताए, फिर बीच में ही परंतु वाला। हाँ, देखो ऊपर, दव्येन विना कक्खड आदि गुणानां अन्ये गुणे हि स संबंध दंशनादो। यानी शब्द नय द्रव्य को विषय करता है, तो ये स्पर्श शब्द स्पर्श में, ये जो स्पर्श जो है ना, हमने कर्कश आदि गुणों का। अन्य गुण कौन से? कोमल, जैसे कर्कश है, और उसका शीत के साथ संबंध होगा, उष्ण के साथ संबंध होगा। अन्य गुण यानी पर्याय ही लेने, स्पर्श गुण की पर्यायों का। आप अभी हमने देखे ना 255 द्विसंयोगी वगैरह भंग होते हैं, उसकी बात लेना यहाँ। तो ये संबंध कब होगा? क्योंकि वो द्रव्य के ही गुण है ना, द्रव्य की पर्याय, द्रव्य के बिना वो घटित नहीं होंगे। और द्रव्य जो है वो शब्दने का विषय होता है, इसलिए उसको स्पर्श, स्पर्श को भी शब्दने का विषय घटित करा है, या ऐसा लंबा लंबा करके उसको घटित किया है। अभी जो हमने पढ़ा था ना, देखो देखो, यहाँ जो अभी हमने 25 पृष्ठ पर पढ़ा था ना, कि वो द्रव्य में मानेंगे तो क्या दोष आएगा, उसकी बात की थी। तो यहाँ गुण को कथनचित द्रव्य मानकर ऐसा उन्होंने बताया था, वो नीचे से दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, गुण को कथनचित द्रव्य मान लेने पर इस आपत्ति का परिहार हो जाता है। क्योंकि यदि द्रव्य को हम स्वीकार करेंगे तो वो द्रव्य नय का विषय हो जाएगा, द्रव्य स्पर्श का विषय हो जाएगा, ऐसे यहाँ बात बताना चाहते। ये अपने निक्षेप हुए नहीं है ना, अभी तो उन्होंने क्या किया है, निक्षेप कौन से नयों का कौन सा निक्षेप विषय, ये इतना ही बताया। निक्षेपों के अर्थ अब शुरू कर दिए बताना। ये जो घोटाले हो रहे हैं क्यों? क्योंकि हमें उन निक्षेपों का यथार्थ स्वरूप पता नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो यही बात क्लियर होने वाली है, क्योंकि ये बीच में ही मैंने 25 पेज निकाल के बताया। अब हम विस्तार से जाएंगे तो एक एक बात क्लियर होती जाएगी, या आप लिख के रखना कहीं ये समझ में नहीं आया तो आगे बढ़कर इसका एक्सप्लेनेशन आने वाला है। देखो अभी हम 8 पृष्ठ पर 9 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। ये जो 13 प्रकार के निक्षेप हमने देखे थे उसके एक एक का अर्थ अभी बता रहे हैं। जो सो नाम फासो नाम सो जीवस्य वा अजीवस्य वा जीवाणम वा अजीवाणम वा जीवस्य च अजीवस्य च जीवस्य च अजीवाणम च जीवाणम च अजीवस्य च जीवाणम च अजीवाणम च जस्य नाम कीरदि फासे तिसो सवो नाम फासो नाम। क्या कहते हैं? जो वह नाम स्पर्श है वह एक जीव एक अजीव, नाना जीव नाना अजीव, एक जीव और एक अजीव, एक जीव और नाना अजीव, नाना जीव और एक अजीव, नाना जीव और नाना अजीव, इनमें से जिसका स्पर्श ऐसा नाम किया जाता है वह सब नाम स्पर्श है। ये हमने नाम रखा स्पर्श, ये नाम स्पर्श हुआ। तो किसका 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 रख सकते, तो उसकी बात उन्होंने बता दी। नाम के आधारभूत, ये नाम का आधार क्या है, किसका नाम रखा। जीवस्व हाँ यानी पहले सिंगल सिंगल लिया, पहले हमने देखा था ना ये कौन, वहाँ कॉम्बिनेशन किसमें जीव और अजीव में करना है, जीव एक भी हो सकता है अधिक भी हो सकते हैं, एक जीव एक भाग उसके आंकड़े दे दो तो ख्याल में आएगा। अधिकरण आठ होते हैं ना, कितने होते हैं देखो, एक जीव, फिर दो संख्या एक अजीव, तीसरे पर नाना जीव, चौथे पर नाना अजीव, अभी कॉम्बिनेशन, पांचवे में एक जीव एक अजीव, फिर जीव को एक ही रखना, ये हम अक्ष संचार करते हैं ना वैसे यहाँ भी लेना। छठे पॉइंट पर एक जीव नाना अजीव, अभी जीवों को नाना करना और अजीवों में एक और अनेक घटाना। सातवें पॉइंट पर नाना जीव एक अजीव, और आठवें में नाना जीव और नाना अजीव, बराबर। नाम के आधारभूत जीव और अजीव के एक और अनेक के संयोग से आठ ही भंग उत्पन्न होते हैं, अन्य भंग नहीं होते, क्योंकि हर एक में जीव में भी दो है एक अनेक, और अजीव में भी दो है एक अनेक। इन आठों में जिसका स्पर्श ऐसा नाम रखा जाता है वह सब स्पर्श शब्द नाम स्पर्श कहलाता है। इन आठों में नाना जीवों को मिलकर स्पर्श कहेंगे या एक जीव को स्पर्श कहेंगे, जो कुछ है जिसका नाम स्पर्श रख दिया वो सब नाम स्पर्श हो गया। शंका, एक ही स्पर्श शब्द में कर्मत्व व कर्तृत्व दोनों कैसे बन सकते हैं। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि लोक में सूर्य चंद्र खद्योत अग्नि मणि और नक्षत्र आदि ऐसे अनेक पदार्थ हैं जिनमें उदय भाव देखा जाता है, सॉरी, जिनमें उभय भाव देखा जाता है, इसी प्रकार प्रकृत में जानना चाहिए, इसी का विशेषार्थ बताते हैं। यहाँ देखो, यहाँ स्पर्श शब्द को अन्य पदार्थ का वाचक न मानकर वही उसका वाच्य और वही उसका वाचक माना गया है, इसी पर यह शंका की गई है, एक ही स्पर्श शब्द एक साथ कर्ता और कर्म दोनों कैसे हो सकता है, ये नाम भी है और वो पदार्थों को भी बता रहा है, ये कैसे हो सकता है। इसका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि जिस प्रकार सूर्य और चंद्र आदि प्रकाशमान एक एक पदार्थ में युगपत प्रकाश्य प्रकाशक भाव देखा जाता है, हम उदाहरण भी देते ना, जो दीपक है वो प्रकाशित करता है अन्य पदार्थों को, तो स्वयं को भी करता है कि नहीं करता, इसको स्वपर प्रकाशक कहते हैं। शब्द को भी स्वपर प्रकाशक कहते हैं, क्यों, शब्द अन्य चीज को भी बताता है, वो स्वयं को भी बताता है, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं कि सूर्य और चंद्र आदि प्रकाशमान एक एक पदार्थ में युगपत प्रकाश्य यानी प्रकाशित होना और प्रकाशक अन्य को प्रकाशित करना भाव देखा जाता है, उसी प्रकार यहाँ एक स्पर्श शब्द को भी युगपत कर्ता और कर्म मानने में कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार नाम स्पर्श प्ररूपणा समाप्त हुई। क्या खद्यो तेने जुगनु आगे आ गया खद्योत, हिंदी में जुगनू मराठी में काजवा गुजराती में आ गया। हाँ अच्छा, अभी ये ठवण यानी स्थापना स्पर्श की बात होगी। जो सो ठवण फासो नाम सो कट्ठकम्मेसु वा चित्तकम्मेसु वा पोत्तकम्मेसु वा लेपकम्मेसु वा लेणकम्मेसु वा सेलकम्मेसु वा गृहकम्मेसु वा भित्तिकम्मेसु वा दंतकम्मेसु वा भेंडकम्मेसु वा अखो वा वराड़ो वा जे चामण्ये एवमादिया ठवणाये ठविज्यदि फासेत्ति सो सवो ठवण फासो नाम। पहले भी ये ऐसी बातें बहुत हमने देखी थी स्थापना में, अभी पढ़ेंगे। जो वह स्थापना स्पर्श है वह काष्ठकर्म यानी कि लकड़ी की कोई वस्तु में हमने उसका हाँ किसकी स्थापना की, स्पर्श की। चित्र कर्म यानी कोई चित्र बनाते उसकी बात है। पोत कर्म, पोते ने कपड़े के भी डॉल्स वगैरह बनाते हैं ना, वो पोत कर्म। लेप्य कर्म यानी लिंपन करने, वो कागज के भी बनाते हैं ना या मिट्टी का, वो लेप्य कर्म। लयन कर्म, लयन यानी जिसको हम कहते हैं ना लेनी मराठी में कहते हैं, वो तो कार्विंग्स। हाँ जैसे ये है ना व्यजंठा में क्या है वो लयन कर्म कहेंगे, गुफाओं में वगैरह बनाते। शैल कर्म, शैल मैंने वो पत्थरों में जो कुछ शिल्पकार जो है। गृह कर्म, भित्ति कर्म। दंत कर्म यानी जो हाथी दंत होते उसमें जो बनाते। भेंड कर्म, भेंड वो भेंडा या भेंडा ऐसा वो सफेद एक आता है बहुत लाइट वनस्पति का है वो, उसमें से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ये बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशंस भी होते हैं उसके, ये भेंड कर्म। इनमें तथा अक्ष और वराड़क एवं इनको लेकर इसी प्रकार और भी जो एकत्व के संकल्प द्वारा स्थापना अर्थात बुद्धि में स्पर्श रूप से स्थापित किए जाते हैं वह सब स्थापना स्पर्श है। ये नीचे अभी दिखा दिया है। दो पैर, चार पैर और बिना पैर, ये दो पैर वाले प्राणी कौन है? मनुष्य है। और चार पैर वाले बहुत सारे है ना, गाय भैंस। और बिना पैर वाले हाँ स्नेक है, मछली है। हाँ बहुत पैर वाले प्राणियों की, बहुत पैर वाले भी सेंटीपेड वगैरह वो जो ईयर वगैरह सब होते हैं बहुत सारी उसमें पे कान खजूरो हाँ वो सब समझना। प्राणियों की काष्ठ में जो प्रतिमाएं बनाई जाती है उन्हें काष्ठ कर्म कहते हैं, यानी इन शॉर्ट काष्ठ में लकड़ियों की जो कुछ हम चीजें बनाएंगे अलग अलग प्राणियों की वो काष्ठ कर्म है। ये कुछ पहले ऐसा पहले बुझाते हैं ना, एक चार पहिया था उसके ऊपर बैठा एक दो पहिया और फिर उसने निगल गया तीन पहिया। अच्छा हाँ और उसने निगल गया बिन पहिया यानी वो मच्छी निगल गई। ये कोई भैंस है उसके पीठ पर वो बगुला बैठा और उसने वो मच्छी खाई, तो ऐसे कुछ पहली थी वो। जब ये ही चार प्रकार की प्रतिमाएं हाँ यानी अलग अलग जो कुछ हम कहें ना वो लकड़ी में अगर बनाए कोई किसी का स्टैचू बनाने लकड़ी में बनाए या भींत में बनाए या मिट्टी में बनाए जो कुछ है वो अभी बताएंगे। भित्ति वो भी चित्रकर्म हो जाएगा। वस्त्र पोतकर्म, स्तंभ आदि पर रागवर्ता आदि वर्ण विषयों के द्वारा चित्रित की जाती है। हाँ तब उन्हें चित्रकर्म कहते हैं। चित्रकर्म यानी चित्र कहाँ कहाँ पर हो जाता है, भिंती पर भी हो सकते हैं, वस्त्र पर भी, वो पट बना दे ना, चित्र होते हैं, स्तंभ आदि पर भी होते हैं। अब घोड़ा हाथी मनुष्य स्त्री वृक और वाघ आदि की वस्त्र विशेष में उकीरी गई प्रतिमाओं को पोत कर्म कहते हैं, यानी वस्त्र में उनकी प्रतिमाएं बनाते हैं वो पोत कर्म, पैचवर्क। अब मिट्टी खड़िया और बालू, खड़िया ने वो खड़ी जिसको कहते हैं, आदि के लेप से जो प्रतिमाएं बनाई जाती है उन्हें लेप्य कर्म कहते हैं। शिला स्वरूप पर्वतों से अभिन्न जो प्रतिमाएं बनाई जाती है उन्हें लयन कर्म कहते हैं, यानी उससे अभिन्न है ना, कोई तो पत्थर में से अलग पत्थर काटकर उसकी बनाई जाती है, जैसे हम मूर्ति बनाते हैं, परंतु लयन यानी जिसको हम लेनी कहते हैं, अजंठा एलोरा, उसी में वहीं पर गुफाओं में पर्वत में से काट काट कर वहीं पर बनाई है, वो लयन कर्म। वो तो अलग हो गए, ये पर्वतों से अभिन्न प्रतिमाएं। हाँ, अभी जो आपने कल की बात हुई गोपाचल पर्वत में, उस पर्वत में से काट कर वहीं पर प्रतिमाएं बनाते हैं, या जो हमने इतने सारे अजंठा एलोरा की इतनी गुफाएं हैं, वो सारा लयन कर्म कहलाएगा। हाँ, वो भी पत्थर वहीं पर था, परंतु वो लयन नहीं कहेंगे, अभी वो उससे भिन्न हो गया ना, वो तो शिला का पत्थर में बनाई है ऐसा कहेंगे उसको, वो तो काटकर ही पहाड़ में से बनाई है, परंतु ये लेने कैसे होते कि वो दीवारों पर भी रहती है वहां पर, केव्स जिसको कहते हैं ना। गजपंद में भी है ना ऊपर, वो वहीं पर उकेरी हुई है। हाँ, उसको लयन कहते हैं, इसी से वो मराठी में लेनी शब्द आया, लेनी केव्स जो है हम कहते अजंठा केव्स, एलोरा केव्स, तो लेनी कहते उसको, ये लयन। पृथक पड़ी हुई शिलाओं में जो प्रतिमाएं बनाई जाती है उसे शैल कर्म कहते हैं। अब ये पृथक प्रतिमा हो गई ना, वो शैल, उसमें से बड़ा पत्थर मिला और उसमें से बनाए, तो ये शैल कर्म कहलाएगा। गोपुरों के शिखरों से अभिन्न ईंट और पत्थर आदि के द्वारा जो प्रतिमाएं चीनी जाती है उन्हें ग्रह कर्म कहते हैं। ये तो ये हम देख रहे हैं ऐसे ऊपर गोपुर वगैरह बनाते हैं, शिखर बनाते हैं, अंदर ही उस मिट्टी में ही से ही बनाते हैं वहां पर। ये जो नए नए मंदिर बनते हैं या तो उसमें चित्र बनाते हैं या तो फिर वहां दीवारों में वो ईंट पत्थर सीमेंट से बना देते हैं। भित्ती से अभिन्न तृणों से जो प्रतिमाएं बनाई जाती है उन्हें भित्ती कर्म कहते हैं। पहले वो तो तृणों के भिंती होती है ना, या अपनी आजकल की भिंती नहीं लेना। हाथी के दांत में जो प्रतिमाएं उत्कीर्ण की जाती है उन्हें दंत कर्म कहते हैं, हस्ती दंत कहते ना वो। तथा भेंड अर्थात उन्होंने जगह छोड़ी है, गड़ी धनी उसमें से बनी हुई, भेंड मोएण घड़ित पड़िमाओ, भेंड कम्माणी नाम, घड़ी धनी उसमें घड़ी गई। भेंड का अर्थ उन्होंने अर्थात करके वो छोड़ दिया है, परंतु भेंड नाम का वो वनस्पति आती है सूखी वनस्पति, तो उसमें वो ऊपर का छिलका निकाल देते हैं तो अंदर वो सफेद मैटर रहता है, तो उसमें बहुत अच्छी। हाँ हाँ, उसमें भी वो भेंड होता है, वो तो लाइट है ना पानी के ऊपर ऐसे, उससे घड़ी गई प्रतिमाओं को भेंड कर्म कहते हैं। आदि शब्द से कांसा, तांबा, चांदी और सुवर्ण यानी सभी अलग अलग धातु आदि द्वारा सांचे में ढाली गई प्रतिमाएं भी ग्रहण करनी चाहिए। ये तो ये सारा जानने का प्रयोजन क्या है, इस प्रकार सद्भाव स्थापना के आधार का कथन किया। ये सद्भाव यानी तदाकार स्थापना, द्युत कर्म की स्थापना में अब ये तदाकार स्थापना हुई। अब जो अतदाकार स्थापना है, तो जैसे हम वो शतरंज खेलते हैं या द्युत में उसको एक को हाथी घोड़ा कह दिया, द्युत कर्म की स्थापना में जो जय पराजय की निमित्तभूत छोटी कौड़ियाँ और फांसे फांसे होते हैं उन्हें अक्ष कहते हैं। ये जो हम कहते हैं ना वो दान डालना, यानी ऐसे ऐसे करके कितना आया, 6 आए कि 12 आए कि 5 आए, तो उसको कहते हैं अक्ष। और इनके अतिरिक्त कौड़ियों को वराटक कहते हैं, यानी जो ऐसे हम आगे घुमाते हैं वो वराटक। आपने पहले वाले पट अगर देखे होगे, चौपट देखा है कभी? हाँ। तो ये वो जो सोंगटी कहते ना उसको, हाँ हाँ, ये वराटक। इस प्रकार इन दोनों पदों के द्वारा असद्भाव स्थापना का विषय दिखलाया है। अतदाकर, और पूर्वोक्त पदों के द्वारा सद्भाव स्थापना का विषय दिखलाया है उसको तदाकर कहेंगे हम। सूत्र में जे च अमी अन्य एवं आदिया, यह जो वचन आया है सो अनुक्त का संग्रह करने के लिए इसका उभयत्र ही संबंध करना चाहिए। क्या कहते हैं? और इस प्रकार के जो कोई है ऐसा, इस तदाकार में भी जो अन्य जो कुछ है उसको ले लेना, और अतदाकार में भी अन्य जो कुछ है उसको लेना। एक सेकंड। स्थापना ऐसा कहने पर उससे मति विशेष रूप धारणा ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। इन पूर्वोक्त यानी बुद्धि के द्वारा हमने उसमें मान लिया है ना, स्थापना कर दी। इन पूर्वोक्त सद्भाव और असद्भाव के भेद से दो प्रकार के पदार्थों में स्थापना अर्थात बुद्धि से, अमा अर्थात अभेद रूप से जो स्पर्श ऐसी स्थापना होती है वह सब स्थापना स्पर्श है। यानी हमने वो ये स्पर्श है ऐसा कह दिया तो ये स्थापना स्पर्श हुआ किसी भी चीज में। शंका, यहां स्पृश्य स्पर्शक भाव कैसे हो सकता है? तो क्या कहते हैं, एक ही चीज में किसका किसके साथ स्पर्श हुआ ऐसा पूछ रहे हैं ना, उसका समाधान नहीं, क्योंकि बुद्धि से एकत्व को प्राप्त हुए उनमें स्पृश्य स्पर्शक भाव के होने में कोई विरोध नहीं आता, अथवा सत्व और प्रमेयत्व आदि की अपेक्षा सबका सर्व विषयक स्पर्शन पाया जाता है। इसी बात को समझाते हैं। विशेषार्थ, स्थापना के दो भेद है, सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना। तदाकार स्थापना को सद्भाव स्थापना कहते हैं और अतदाकार स्थापना को असद्भाव स्थापना कहते हैं। जिनमें स्थापना की जाती है वे पदार्थ जुदे होते हैं, और जिनकी स्थापना की जाती है वे पदार्थ जुदे होते हैं। प्रकृति में स्पर्श का विशेष विचार चल रहा है, इसलिए प्रश्न है कि स्पर्श से भिन्न पदार्थों में स्पर्श शब्द का व्यवहार कैसे किया जा सकेगा। समाधान यह है कि बुद्धि से अन्य पदार्थ में स्पर्श का आरोप कर लिया जाता है, जिससे उसमें यह स्पर्श है ऐसा व्यवहार बन जाता है। प्रकृति में इसी दृष्टि से स्पर्श स्थापना के दो भेद और उनके विविध उदाहरण उपस्थित किए गए हैं। जो सो दव फांसो नामा, अब द्रव्य स्पर्श का अधिकार है। यह वचन पूर्व प्रतिज्ञा की संभाल करता है, अथवा आगे इसका अर्थ कहते हैं यह जतलाने के लिए यह वचन कहा है। ये रुकना पड़ेगा ना यहाँ पर, क्योंकि आगे का बड़ा है पैराग्राफ, उसकी शंका समाधान भी चलेगा। यहीं पर रुकते हैं, फिर कल ले लेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई।